نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والبرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي ألف ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمد لله آج کی اس عظیم بابرکت رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا محبوب ترین عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انسانوں پہ عجیب عجیب طریقے سے اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور بالخصوص مومنین پر ہر وقت اپنی رحمت کے دروازے کھولتے ہیں. ایک سے ایک بڑھ کر اللہ تعالیٰ انعام اور مواقع ہمیں دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اس جہنم کی آگ سے بچیں اور آنے والے وقت جو بہت ہی سخت وقت ہے اور بہت ہی ہمارے قریب ہے اس سے ہم حفاظت کر سکیں. سال کے اندر اللہ پاک دیکھیں مختلف دنوں میں مختلف مہینوں میں اپنی رحمت و فضل کا کرم کا ایسا انعام فرماتے ہیں انسان پر کہ جیسے ابھی پچھلے دنوں کتنا بڑا عظیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ نصیب فرمایا ماہ رمضان. اس آزمائش کے وقت میں الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ سے کرم سے لوگوں کی عبادتیں نصیب فرمائیں. توبہ کرنے والوں نے توبہیں مانگی, آگ سے بچنے والوں نے آگ سے بچنے کا اہتمام کیا. اس کے بعد انسان ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہماری فطرتوں کو ہماری حیثیتوں کو. رمضان کا زور آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوا, پھر دنیا کی مصروفیت غفلتیں بیوی بچے گھر بار کاروبار بہت سی چیزیں جو ہماری زندگی کے اندر حائل ہیں, پھر اس طرف انسان چلا گیا اور پھر جتنی محنتیں کی تھیں پھر وہ کم ہوتی چلی گئیں اور پھر ہم جہنم کی آگ کے قریب پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ نے پھر ایک فضل فرمایا اور ذوالحجہ کی 10 راتیں ہمیں نصیب فرمائی. یہ بہت ہی عظیم راتیں ہیں, قرآن میں اس کی تعریف ہے, حدیث میں اس کی تعریف ہے, حدیثین نے اس کی تعریف کی ہے, آئمہ نے اس کو بیان کیا ہے. بے انتہا فضائل رحمتیں برکتیں نعمتیں بے شمار اللہ نے ان دنوں میں ان راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیے انسان کے لیے, بلکہ ان کے فضائل تو عجیب یہ ہے کہ اس کا انعام بھی اللہ نے عجیب رکھا ہے کہ اس کے اندر جو انسان اعمال کرے گا دن میں یا رات میں تو اس کا انعام اللہ تعالیٰ نے جنت سے نہیں کہا بلکہ فرمایا اس کا انعام میری محبوبیت ہے. تو یہ میرے خیال بڑا عجیب انعام ہے الحمدللہ جو اللہ نے دیا. تو ہر عمل انسان کرے اس میں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں. تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ پھر ہم نے اپنے آپ کو مستعد کرنا ہے ان 10 دنوں کے اندر. ایسے ایام آتے ہیں تو اس میں کیا کرنا چاہیے آدمی کو کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے دن دیے کہ بھائی غفلت ختم کریں, جو سستی آ گئی تھی اس کو پھر ختم کریں, جو گناہ ہو گئے اس سے پھر توبہ کر لیں. یہ اس لیے دیتے ہیں اللہ پاک یہ دن, یاد رکھیں یہ تو عبادت ہیں جو اللہ نے دی ہیں کہ بھائی اس کے ساتھ روزہ رکھ لو ये कर लो वो कर लो, ये तो इबादत नहीं है शायद, लेकिन मकसद इसका ये है जो ये बता रहा हूँ आपको, मकसद इसका ये है कि जो हम रमज़ान से लेकर अब तक जो हमसे गलतियाँ हुई हैं, फिर कोताही हुई हैं, फिर गफलत हुई हैं, फिर जिक्र छोड़ने लगे, फिर अपने मामूलात कमज़ोर कर लिए, तो अब ये एक मौका दिया है कि फिर हम इसको अब समझें, इन दस्तों में बैठ कर हम तौबा करें अपने गुनाहों से, और जो मामूलात हमारे सुस्त हो गए थे, जिसमें कमज़ोरी आ गई थी, उनका मुहासबा करें और ईमान को ताज़ा करें, ईमान को फिर ताज़ा करें, फिर मजबूत करें, क्योंकि गुनाहों से इंसान कम ईमान कमज़ोर होता है ना, उस पर असर पड़ता है, इस तरह सेहत पर असर पड़ता है ना बीमारियों से, तो गुनाहों से इंसान के ईमान पर असर पड़ता है और वो कमज़ोर हो जाता है। तो ना जाने अब हम क्या क्या हमारे से हरकतें हुई होंगी, हो जाती इंसान से, इंसान है वो तो बताया आप, तभी तो अल्लाह ने तमाम किया है। लेकिन अब यह है कि अल्लाह ताला ने अगर इंसान गंदा हो जाए तो सामने खूबसूरत चश्मा हो तो आदमी डुबकी मारता है पाक हो जाता है, सुभान अल्लाह। तो अब इतने गंद हमने किए हैं रूहानी, जितने गंद किए हैं अल्लाह ने एक चश्मा खोल दिया, उसमें छलांग मारे और पाक कर लें अपने आप को, तो बेहतरीन चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं क्या बुलावा आ जाए इंसान को, तो इन दस दिनों में हमने यही करना है कि अपने आप के मुहासबा करना है, अपने मनों को देखना है, जहाँ सुस्ती हो गई है उसको ख़त्म करना है, फिर नई तरीके से अपने प्लानिंग करनी है, फिर उसको ना जो था मुस्तैदी के साथ उसका नया प्लान करना है कि भाई अब मैं इसका फिर शुरू करता हूँ। तो ये अल्लाह को बहुत पसंद आएगी बात, क्योंकि इस मकसद के मैंने ये चीज़ दी है, इस आदमी ने समझ लिया अल्हम्दुलिल्लाह और शुरू हो जाए फिर। कभी ज़िंदगी में इंसान गुनाहों के बाद ना उम्मीद ना हो, एक बात याद, हम बहुत जल्दी क्योंकि हम कहते हैं ओ हमने इतना जिक्र किया, इतना कुरान पढ़े, देखो हमने ये किया, अब फिर हमसे गुनाह हो गए यार, बस अब तो कुछ फ़ायदा नहीं, अब क्या होगा पता नहीं, मेरी तौबा कबूल होगी भी नहीं होगी, मैंने फिर ये गलती कर दी, तो एकदम अल्लाह फिर कोई महीना दे देते हैं, सुभान अल्लाह, फिर कोई रात दे देते हैं, फिर कहते हैं आ फिर आ, सुभान अल्लाह, कितना अच्छा इंतज़ाम अल्लाह ने किया अल्लाह, तो उसको भूल जाए जो हो गया ख़त्म, अल्लाह ने जो कहते भूल जाओ, अब मैं तुम्हें एक रात दे दी है, अब मुस्तैद होकर तुम इसके साथ दोबारा अमल शुरू कर दो। तो मेन ये है कि हमने अपने ईमान को अब ताज़ा करना है, स्ट्रांग हो जाए। तो मैं कोई हदीस सुनाता हूँ आपको, अभी आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। जहन में एक हदीस आई है बड़ी खूबसूरत, बुखारी की हदीस है अल्हम्दुलिल्लाह। एक सहाबी आए, अजीब सवाल होते थे, अजीब सवाल करते थे, उम्मत को कैसा संवार दिया सहाबियों के सवाल होने की, हमारी तो किस्मतें बदल दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सहाबी आए, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह अजीब सवाल है, देखें आप एक शख्स ये ईमान ताज़ा करने के लिए आपको हदीस सुना रहा है इंशाल्लाह, क्योंकि हमने ईमान ताज़े करने ना अपने मजबूत करने। तो एक सहाबी आए कहने या रसूल अल्लाह एक शख्स है, एक आदमी से उसके अमाल की वजह से बहुत मोहब्बत करता है। देखें सवाल क्या करते हैं, एक शख्स है एक आदमी से उसके अमाल की वजह से बहुत मोहब्बत करता है। तो यहाँ भी एक दिल में बात आई है, इस हदीस के नुक्ते में कुछ बता दूँ। ये सवाल जो सहाबी कर रहे होंगे तो उनकी नज़र में तो एक ही शख्स था, होता था उस वक्त ज़माने के अंदर, उससे ज़्यादा कोई महबूब शख्स उनकी है ही नहीं, थी ही नहीं, और वो थी इमाम अल-अंबिया सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते करीमा। तो उनका महबूबियत तो वहीं होता था ना, तो मुमकिन नहीं, हकीकत में दिल ही कहता है कि वो सहाबी जो कह रहे होंगे वो किसकी अमाल की बात कर रहे होंगे, वो नबी करीम के अमाल की बात कर रहे होंगे। यार साहब की तो हर अदा हमें पसंद है, हर बातें आपकी पसंद है, हर चीज़ आपकी पसंद है, उठना आपका पसंद है, सोना आपका पसंद है, बैठना आपका पसंद है, खाना आपका पसंद है, जो आप खाते हैं वो पसंद है। ये मेरा शौक यही कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये इशारा किस तरफ था, नबी करीम की तरफ था इशारा सहाबी का, कि एक शख्स है यानी मैं ही हूँ, किसी आपकी तो इशारा, उसके हर अमाल को मैं बहुत महबूब करता हूँ, उस अमल की वजह से बहुत ही उसे प्यार करता हूँ, बहुत ही महबूब है वो शख्सियत मुझे, लेकिन क्या करूँ उस जैसे अमाल नहीं कर सकता, सुभान अल्लाह। वो कौन कर सकते हैं नबी के मुकाबले में अमाल, तो कहना है लेकिन उस जैसे अमाल मैं नहीं कर सकता। अब आदमी देख लें क्या स्टैंडर्ड दिया अल्लाह ताला ने महबूब मोहब्बत का? आपको मुझे भी तो यही होना चाहिए ना, किसी इंसान से क्या मोहब्बत करनी, उसके अमाल की वजह से उससे मोहब्बत करें। आप कहते हैं इससे मुझे बड़ी मोहब्बत है, इससे मेरी बड़ी मोहब्बत है, होती है। जैसे मुझे अपने हजरत से बहुत मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। पंग धोल कहता हूँ मैं तो, मैं आशिक हूँ उनका। तो इस तरह होती है मोहब्बत इंसान पर, किस वजह से मोहब्बत है। आपका अमल मुझे बहुत पसंद आया था। वो कौन सा अमल था कि हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते थे। मैं तो वजह में बात करता हूँ, अपनी मोहब्बत को बता रहा हूँ आप। मुझे तो मोहब्बत है और मैंने कहा भी उनसे, तो किसी अमल की वजह से। अब मैं उनसे कहती हूँ मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, आप बहुत हसीन, बात नहीं बनती। मैं मुझे आपसे मोहब्बत है, आप माशाल्लाह बहुत प्यारे लगते हैं चलते, बात बनती। मुझे आपसे मोहब्बत है, आपके जो पैसे हैं बहुत अच्छे हैं आपके पास, वो मुझे उनसे मोहब्बत। आपका मकान बड़ा अच्छा है, मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है। होती है लोगों को मोहब्बत, आपकी दुकान को देख के बजे बड़ा खुश होता है दिल, मुझे आपसे मोहब्बत है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या फरमाया साहबी ने कि किसी नेक आमाल की वजह से अगर उससे मोहब्बत है, ये भी ईमान की निशानी है। याद रखिए, हम चलते हैं बाजार में, देखते हैं ये एक आदमी जा रहा है, खूबसूरत आदमी जा रहा है, लेकिन एकदम जो जिसका ईमान मजबूत होएगा वो किस पे अट्रैक्ट होगा कि किसी आदमी को अच्छा अमल करते देखेगा, कहेगा सुभान अल्लाह, कितना सोना कुरान पर्दा पे है। हाँ देखो यार कैसा जिक्र कर रहा है अल्लाह ताला का, देखो ये ईमान की निशानी है कि एकदम उसका अट्रैक्ट होता है। ये निशानी बता रहा हूँ अपने, हम ईमान को अपने ताज़ा करने की चीज़ें देखें। आप इस पे ना जाएं, इस तुम कहाँ देखो यार कितना अच्छा है, इसकी यार कितना, ये देखो कितना हसीन है यार, कितना प्यारा लगता है। नहीं, जब किसी के हसीन अमाल करते देखें एकदम यकलख्त आपके मुंह से निकले सुभान अल्लाह। तो मैं तो अपने हजरत को जब भी देखता था जिक्र के अंदर मस्त, मक्का हो मदीना हो, इधर हो उधर हो, घर हो जंगल हो बार हो, तो जब देखता था जिक्र में कहता सुभान अल्लाह। तो अब यह हदीस मेरा भी काम बना रही है। तो साहब ने कहा जी एक शख्स एक आदमी से उसके प्यारे अमलों की वजह से उससे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उस जैसे अमल नहीं कर सकता। तो फौरन अल्लाह के नबी ने एकदम जवाब दिया, बड़ा प्यारा जवाब था, मुजायका नहीं, ये मैं उर्दू में तर्जमा कर रहा हूँ, यानी क्या डोंट वरी। आप कह सकते डोंट वरी, क्यों फिक्र करता है, जवाब आ रहा है, एकदम जवाब आ रहा है, अपने आशिक को जवाब दे रहे हैं सुभान अल्लाह। ये डोंट वरी, फिक्र क्यों करता है। आदमी रोजे कयामत में उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। सारे सहाबी मस्त हो गए उस बात सुन के। तो कम से कम ऐसे ही कर लें, ईमान कितना ताजा हो गया, ईमान कितनी आसान हो गई जन्नत। आप ये देखें सारी मोहब्बतों को ला करें और एक मोहब्बत को जिंदा करें, उस शख्स की मोहब्बत को जो किसी जो उसका अमल आपको महबूब हो जाए, उसकी मोहब्बत को मजबूत से पकड़ लें। बस ये होगा कि साथ ही बैठा होगा जन्नत में आपके इंशाअल्लाह, जान नहीं छूटेगी, फिर वहीं होंगे इंशाअल्लाह साथ। अल्लाह पाक हम सबको अल्लाह के दीन की खातिर मोहब्बत अता फरमाए। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا 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 اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطفنا وامرنا كل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت انت اعلم به انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم صمتنا للإيمان وأمتنا للإيمان واشهدنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافي البليات ادفع بلياتنا. يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم دمرهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.